बाड़ा कुछ ललन टॉप सुनते हैं।
कुछ और सबक हमको जमाने ने सिखाए, कुछ और सबक हमने किताबों में पढ़े थे। किताबें मेरी दोस्त हैं, कभी फंसा देती हैं, कभी हंसा देती हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये किताबों की दुनिया ही मेरी दुनिया है, लेकिन इतना खुदगर्ज भी नहीं कि अपनी ये खुशी आपसे ना बांटूं। इन किताबों को, इनकी खुशबू को, इनके लेखकों को आप तक लेकर आता हूँ मैं किताब वाला में। सुनिए किताब वाला मेरे यानी सौरभ द्विवेदी के साथ सिर्फ बाजा पर।
क्या पीयूष बघेले को ऐसा लगता है कि तब कांग्रेस थोड़ा सा ज्यादा एकोमोडेटिव होती, नेहरू थोड़े से ज्यादा एकोमोडेटिव होते?
उन्हें कभी हिंदू से ही नहीं कहा कि तुम मुसलमान के घर खाना खाओ, या मुसलमान से नहीं कहा कि तुम हिंदू के घर खाना खाओ। उन्होंने इंटर जो दोनों धर्मों में शादियां कराने के बारे में कोई शुरू में बात नहीं कही कि होना ही चाहिए, कि आखिरी समय में वो कह रहे हैं कि जनता मेरे साथ नहीं है। लेकिन आखिरी में जहां वो कंक्लूड करते हैं इस सारे विषय को और अपनी राय रखते हैं, उसमें वो कहते हैं कि अगर मुसलमान चाहेंगे तो पाकिस्तान बनाना पड़ेगा।
असहाय दिखते हैं थोड़े से।
तो ये लाचारियां तो भगवान कृष्ण के साथ, अगर महाभारत में व्यास जी ने ये कराया कि भगवान कृष्ण अकेले पड़े हुए हैं और एक बहेलिए के तीर से उनकी मृत्यु हो जाती है,
बिल्कुल,
तो शायद ट्रेजडीज के लिए मनुष्य अभिशप्त है और उस अभिशाप से गांधी जी भी नहीं बच सके।
ये बहुत ब्लैक एंड वाइट हो रहा था और मैं इसे थोड़ा ग्रे पर लेकर आता हूँ। हालांकि मुझे इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी में असद जैदी का मंगलेश डबराल पर लिखा वो लेख याद है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि ग्रे के संदर्भ भी ब्लैक एंड वाइट से ही आते हैं। फिर भी मैं इसे थोड़ा इतर करता हूँ। गांधी आपने इसमें लिखा कि सांप्रदायिकता अंततः उनकी जान लेकर के ही मानी। गांधी की सांप्रदायिकता के जो तीन चार बुनियादी पहलू हैं, उससे लड़ने के उनके पास क्या टूल्स थे?
तो वो जो हेड है वो कहता है इससे निपटने के लिए तो हमारा जमादार ही काफी है, जिसके पास खंजर था, और वो जमादार कोई और नहीं था, नाथूराम गोडसे था।
हाड़ मास का एक इंसान है, निहायत पोपली हंसी है उसकी और बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के शौक हैं उसके, लेकिन गौर से देखिए तो लगता है कि जो कुछ भी करता है उसको लेकर बड़ा मुतमईन है। गांधी कहते हैं इसको, इतिहास की किताबों में चौक चौराहे पर लगे उन बुतों को भी जिनकी कभी कभार सफाई होती है और याद कर लिया जाता है। पर याद की बात ठीक ठीक कहें तो हम सब के पास हमारी जेबों में हमारी जिंदगी चलाने के लिए जो कुछ भी मुद्राएं हैं उस पर भी छपे रहते हैं गांधी, और भाषणों में तो अक्सर उनका जिक्र आता है, भले ही संविधान में इसकी ताकीद ना की गई हो। पर सबको जरूरी सा लगता है गांधी को याद करना, और कुछ को बहुत ज़रूरी लगता है गांधी को कोसना। गांधी के बारे में या हमारे दूसरे इतिहास पुरुषों के बारे में भारत में नए सिरे से बहस जारी है। बहस अच्छी चीज़ है, बशर्ते वो तथ्यों पर आधारित हो और उसके पीछे अपना कोई अलग सा एजेंडा ना हो। आप गांधी पर बात करें, नेहरू पर बात करें, सावरकर पर बात करें, किसी पर भी बात करें, सुभाष बाबू पर बात करें, लेकिन बात के पीछे की मंशा क्या हो, इसको लेकर खूब मुखामुखम होता है, खूब चर्चा होती है। वही चर्चा आज आगे बढ़ेगी, क्योंकि किताब वाला में आज की किताब है गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता। इसे जेन्युइन पब्लिकेशन एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने छापा है, लिखा है पीयूष बघेले ने। इन्होंने इससे पहले नेहरू, मिथक और सत्य नाम की किताब लिखी थी जिसमें हमारा संवाद हुआ था। पीयूष बघेले पहले एक राजनीतिक पत्रकार थे और अब ये राजनेताओं के साथ काम करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर हैं। इन्होंने ये किताब लिखी। किताब में गांधी वांग्मय का जिक्र है और हमारे समय की जो कई चर्चाएं हैं गांधी के इर्द गिर्द, गांधी और गौरक्षा, गांधी और हिंदू सांप्रदायिकता, गांधी और मुस्लिम सांप्रदायिकता, भाषा का सवाल, विभाजन का सवाल, जिन्ना के प्रश्न, सावरकर के प्रश्न, हिंदू महासभा की राजनीति, मुस्लिम लीग की राजनीति, गांधी जब आरएसएस की सभा में गए तब उन्होंने क्या कहा, मुपल्ला में जो दंगा हुआ वहां पर क्या कहा, ऐसे कितने ही विषय हैं खिलाफत आंदोलन से लेकर 1948 तक, जिन पर बड़ी गंभीर किस्म की चर्चा की जरूरत है। और इन सब के बीच पीयूष बघेले की ये प्रस्तावना है कि कुछ लोग गांधी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश की व्याख्या करते हुए पीयूष कालनेमी राक्षस का भी जिक्र करते हैं। तो हमें लगा कि जब इतने प्रसंग हैं और इतने अंतर विरोध हैं तो क्यों ना लेखक से विस्तार से बातचीत की जाए। आपको हमारे दाईं तरफ ये हमारे नौजवान साथी दिख रहे होंगे, ये दीपक तेनगुरिया जी हैं और ये लल्लन टॉप में किताबों का जो सेक्शन है उसके संपादक हैं। तो आज आपके हिस्से दो दो संपादक आए हैं। दीपक जी, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपके जैसे निरंतर किताबें पढ़ने वाले नौजवान के साथ मुझे आज ये इंटरव्यू करने का मौका मिला। और पीयूष जी, मेरे पुराने पत्रकार साथी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लन टॉप में।
बहुत बहुत धन्यवाद सवाल गौरव भाई।
पहला सवाल, अब तो आप रात दिन नेतागिरी करीब से देख रहे हैं, इस किताब को लिखने की ज़रूरत क्यों लगी आपको?
ये किताब इसलिए आ रही है कि गांधी जी को अब वो एक जो पंचतंत्र से था ना, अंधे का हाथी, तो कोई कहता है सूंड है, कोई कहता है पाँव है, कोई कहते हैं पूंछ है, कोई धड़ देखता है, और इसका लाभ उठाकर ये विद्वानों में होते थे वादे वादे जायते तत्वबोधा, तो अब उसके साथ विवाद पैदा करने के लिए कि अपने इस होड़ा हिचकी में अपने गांधी बीच में थोप दो, तो गांधी का राम राज्य है उसे हिंदुत्व का राम राज्य बता दो, गांधी का हिंदू धर्म है उसे कट्टरवाद से जोड़ दो, और गांधी पर आध्यात्मिक रूप से कब्जा कर लो, उनका जो सफ़ेद धवल धोती है उसको भगवा कर दो। ये जो कोशिशें हो रही हैं ये ज़्यादा शातिराना और दूरगामी हैं। तो हमें लगा कि उस हिंदुत्व की पड़ताल कर ली जाए जो आरएसएस के घर से निकलता है, और उस हिंदू धर्म की भी जरा शिनाख्त की जाए जो महात्मा गांधी के पास से आता है और जो सनातन परंपरा में कबीर का था, तुलसी का था। तो इसीलिए किताब पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर, सांप्रदायिकता के प्रश्न पर, उसके आसपास बुनी गई है।
इसी सवाल में जहां आपने छोड़ा इस जवाब को, आप कह रहे हैं, आपने कहा कि गांधी के बारे में इतनी सारी बातें इतनी सारे धड़ों में कही गई, इस एनिग्मा को, गांधी नामक इस पहेली को पहले क्यों नहीं सुलझा लिया गया तब जब गांधी का लिखा, उन पर लिखा हर साल, मतलब जितनी किताबें जीसस के ऊपर आती होंगी लगभग उतनी किताबें गांधी पर आती हैं, उनका खुद का लिखा बोला मौजूद है, फिर भी गांधी को लेकर के जो आपने हाथी वाली संज्ञा दी, मैं उसे पहेली कहूँगा, ये पहेली क्यों है अभी तक गांधी को लेकर?
ये पहेली बहुत पुरानी नहीं है, नई है। गांधी को ना सिर्फ हिंदुस्तान ने बल्कि उनके दुश्मनों ने, उस साम्राज्य ने जिसे हम ब्रिटिश साम्राज्य कहते थे उसने, सब ने भली भांति समझ लिया था। आज हम 2023 में बैठे हैं, ठीक 100 साल पहले या 101 साल पहले गांधी की पहली ऑफिशियल जीवनी रोम्या रूला ने लिखी थी, और उसमें उन्होंने महात्मा गांधी की तुलना क्राइस्ट से कर दी थी कि क्राइस्ट जैसा आ चुका है, और उन्होंने ये लिखा कि हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मान लिया है। ये बातें 100 साल पहले हो चुकी हैं। और फिर आप देखें, आज जो अहिंसा दिवस UN में होता है वो गांधी जी के जन्मदिन पर है, लगभग हिंदुस्तान में भी हर शहर में उनकी मूर्तियां उनके नाम पर मोहल्ले हैं, और दुनिया के हर देश में कम से कम एक मूर्ति तो गांधी जी की होगी। तो वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं विद्वज्जनों में, आम जन में, विद्रोहियों में, ये सारी बातें थी। लेकिन पिछले कुछ समय से एक तबका ऐसा था जो गांधी जी की हत्या के पीछे था, एक विचारधारा ऐसी थी जो गांधी की हत्या के पीछे थी, वो विचारधारा शुरू से ही उनके बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश करती रही। 10-15 साल से उसको नए संचार माध्यम मिल गए, नए प्लेटफॉर्म मिल गए, और नई पाई हुई सत्ता मिल गई, उसके बल पर उसने इतने भ्रम, इतने झूठ गांधी के बारे में फैलाए हैं कि जो आपने सवाल किया कि ये पहले ख़त्म क्यों नहीं हो गए, तो ये सब खत्म थे, नए सिरे से शुरू हुए हैं, और इतने शुरू हुए हैं कि 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को एक तरफ देश का शीर्ष नेतृत्व, विपक्ष, सत्ता पक्ष, सारे दल उनको माला पहनाएंगे, उनको पुष्पांजलि देंगे, और ट्विटर पर उनका हत्यारा या उस तरह की उनके खिलाफ की बातें ट्रेंड करेंगी। तो ये एक साथ जो दोनों चीज़ें चल रही हैं, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत है कि इस जनरेशन को एक बार फिर से वो पुराना दौर दिखाया जाए, क्योंकि उस दौर में उसका भविष्य भी समाहित है, उस दृष्टि से ये लिखा गया।
मेरी बाल सुलभ जिज्ञासा है तो एक सवाल और पूछ लेता हूँ इसमें। आप ये, मैं पहले डिस्क्लेमर के साथ ये बात कह रहा हूँ, किसी भी इतिहासकार का, पत्रकार का, व्यक्ति का अपना निजी चुनाव है वो किस पर लिखे, किस पर पढ़े, पर गांधी को लेकर के एक बहुत बड़ी आलोचना या एक, और मैं बिल्कुल उचित नाम लेकर कहूँ कि दक्षिणपंथी इतिहासकार इस बात पर आलोचना करते हैं कि आज़ादी का जो हमारा पूरा संघर्ष है, मतलब 1915 जब गांधी भारत आ रहे हैं उसके बाद से, वो गांधी के इर्द गिर्द रचा और बुना गया है, है ना, मतलब और जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनको कम स्पेस दिया गया, गांधी को बहुत ज़्यादा दिया गया। इस आलोचना को आप कैसे देखते हैं, और इसमें गांधी पर एक और किताब आना, तो ये इसको
इसमें मैं पीयूष एक सप्लीमेंट्री सवाल भी जोड़ूंगा। संजीव सान्याल भारत सरकार के साथ काम करते हैं, इतिहास पर भी लिख रहे हैं लगातार, उनकी एक किताब आई रिवोल्यूशनरीज के नाम से, उसका हिंदी संस्करण भी आ गया। तो अमित शाह उसकी देश के गृह मंत्री जो हैं अभी, उन्होंने भूमिका लिखी, तो उन्होंने यही बात जो इन्होंने कही कि दक्षिणपंथी विचारक जो कहते हैं कि आप ये बताएं कि गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा अहिंसक और राजनीतिक आंदोलन बिल्ड हुआ ये समझ में आता है, लेकिन उस क्रम में यदि रॉयल नेवी रिवोल्ट या दूसरे जो गर्मपंथी थे, अलग अलग धाराएं थीं, उनके विद्रोह को, उनके योगदान को उतना महत्व तो नहीं दिया गया है, तो इस व्याख्या से आप कितने सहमत हैं?
या तो उन्होंने छठवीं सातवीं आठवीं में इतिहास की किताब पढ़ी नहीं है। मैंने तो पढ़ी, दसवीं तक इतिहास तो प्रॉपर पढ़ा है। मुझे याद है कि उसमें एक फ़ोटो गांधी जी की होती थी, भगत सिंह की फ़ोटो भी मैंने उसी किताब में देखी है, चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो भी उसी में देखी है, नेहरू जी की भी एक ही फ़ोटो छपती है और सुभाष चंद्र बोस की भी एक ही फ़ोटो होते हैं। तो ये इनके मन की कुंठा है कि उन्हें नहीं बताया गया। अगर नहीं बताया गया होता तो आज हिंदुस्तान में डॉक्टर अम्बेडकर की इतनी मूर्तियाँ कैसे हैं, सुभाष चंद्र बोस की इतनी मूर्तियाँ कैसे हैं, सरदार भगत सिंह के नाम पर इतने कॉलेज कैसे हैं, सब लोग उनका नाम जानते हैं। ये एक वो लोग कह रहे हैं जिनका ना सुभाष से कोई ताल्लुक है, ना भगत सिंह से कोई ताल्लुक है, ना गांधी से कोई ताल्लुक है, उनकी धारा है। और मैं इसमें जोड़ता हूँ, उसको आगे करता हूँ, 1915 में जब महात्मा गांधी आए हैं, और इस किताब में जिक्र भी है उसका, उनके जो तमाम स्वागत समारोह हुए, उनमें से शुरुआती दूसरा तीसरा स्वागत समारोह में से एक समारोह बम्बई में होता है, हाँ बम्बई में होता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोखले साहब की थी उसके बम्बई चैप्टर ने किया, और उसमें उस जमाने में सबसे बड़ा हिंदुस्तान के दो ही नेता थे, लोकमान्य तिलक और गोखले, और दोनों में थोड़ा सा विचारधारा की असहमति थी, ये भी बहुत खुला रहस्य। उसमें स्वागत समारोह में तिलक को न्योता नहीं दिया गया, जो भी कारण रहा हो, और तिलक बिना न्योते के उस कार्यक्रम में जाते हैं, और वहाँ जो भाषण देते हैं लोकमान्य तिलक, वो ये कहते हैं कि मैं इस कार्यक्रम में बिना बुलाए आया हूँ, क्योंकि ये जो गांधी दंपति का हम यहाँ स्वागत करने खड़े हुए हैं, इन्होंने सात समंदर पार एक अजनबी ज़मीन पर भारत माता का मान बढ़ाया है, इनके सम्मान में मुझे जहाँ भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, बिना बुलाए या बुलाए। तो आप समझिए कि और तिलक की क्या हैसियत है। तिलक वो हैं जब गांधी को सजा होती है और गांधी कहते हैं कि आज मुझे तिलक के बराबर की सजा हुई है, मेरा मान बढ़ गया, इतना बड़ा नेता उनसे आके ये बात कहता है। भगत सिंह का अगर आप पढ़ें, भगत सिंह जब छोटे बच्चे थे 10-11 साल के, तो जलियांवाला बाग जाते हैं और वहाँ की मिट्टी अपने जेब में रख के लेते, जो उनके कुछ बायोग्राफर्स ने लिखा है, किससे प्रभावित होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जब 14 साल की उम्र में नैनी जेल के अंदर उन्हें बंद हैं, उन पर बैंत पड़ते हैं, वो किसकी जयकारा लगाते हैं, वो महात्मा गांधी की जय बोलते हैं। फिर जब भगत सिंह बड़े हो जाते हैं और उस जेल में बंद होते हैं, उनकी भूख हड़ताल चलती है, तो उनकी रिहाई के लिए वाइसराय से कौन बातचीत करता है, वो महात्मा गांधी करते हैं। उनसे जेल में मिलने कौन जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जाते हैं। अब इनमें क्या अंतर हो रहा है, आगे भी आप बढ़ेंगे तो इनने तो कांग्रेस के नेताओं को अलग कर लिया। सुभाष चंद्र बोस किस पार्टी के अध्यक्ष थे, भगत सिंह के पिताजी किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये असल में एक बहुत सिंपल सी बात है कि अंग्रेजों से कुछ शक्तियाँ लड़ रही थीं और कुछ शक्तियाँ उन शक्तियों से लड़ रही थीं। महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। दूसरा दल क्रांतिकारियों का था, वो भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और भी लोग अलग अलग तौर पर लड़ रहे थे, लेकिन एक हिंदू कट्टरपंथ था और एक मुस्लिम कट्टरपंथ था जो अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा था, जो गांधी से लड़ रहा था। मुस्लिम कट्टरपंथ ने तो अपना पाकिस्तान बना के अलग हो गया, देश के बंटवारा करा दिया, हिंदू कट्टरपंथ आज तक उस कुंठा से बाहर नहीं आया है। तो आज वो भगत सिंह का नाम लेता है, आज वो सरदार पटेल का नाम लेता है, आज वो कम्युनिस्ट विद्रोह का नाम लेता है या सेना के विद्रोह का नाम लेता है। उस समय के इनके पत्र, उस समय के अखबार, उस समय के दस्तावेज में एक अक्षर अगर ये मिल जाए कि इन्होंने उन चीज़ों का समर्थन किया हो, तो हम समझें कि इन्हें सवाल पूछने का अधिकार है।
पीयूष, मैं डॉक्टर अम्बेडकर वाला जो 18वां अध्याय है जिसमें वो विस्तार से जिन्ना और सावरकर की नीतियों की समीक्षा करते हैं और उसके बरक्स गांधी की भी, और आपने वहाँ पे गांधी के बचाव में लिखा भी है कि जब हम अंबेडकर की गांधी पर टिप्पणी पढ़ें तो पूना पैक्ट को भी याद रखें और उसके पहले के मतभेदों को भी याद रखें। मैं उस प्रश्न पर आऊँगा, पर लोग ये भी कहते हैं कि आज जब कांग्रेस ये दलीलें दे रहा है कि सुभाष बाबू क्या थे, कांग्रेसी थे, या सरदार पटेल क्या थे, कांग्रेसी थे, तो वो होता क्या है कि सारी बहसें जो हैं वो 1947 के पहले से अपने लिए तर्क जुटाती हैं अपने अपने हीरो और अपने अपने पक्ष के एवज में, और 1947 के बाद की चुनावी राजनीति पर वो आरोपित कर देती हैं। भाजपा के आलोचक कहेंगे कि भाजपा सावरकर को अपना आराध्य पुरुष मानती है और हिंदू महासभा इसकी पूर्व पीठिका है। बचाव वाले कहेंगे कि साहब संघ तो हिंदू महासभा के साथ नहीं गया, इसीलिए जनसंघ को उन्होंने सपोर्ट किया। कांग्रेस के आलोचक कहेंगे कि क्या 2023 की कांग्रेस इतने विभाजन के बाद और एक परिवार के आधिपत्य के बाद वही कांग्रेस है जहां पे किस किस्म की मुठभेड़ होती थी जब सरदार पटेल और नेहरू के कैंडिडेट 1949-50 में चुनाव लड़ते हैं अध्यक्षी का, तो वो तर्क देते हैं। और फिर एक ये बात भी कही जाती है कि सुभाष बाबू कांग्रेसी थे, पटेल कांग्रेसी थे, तो उनके योगदान को उतने प्रमुखता से याद क्यों नहीं किया गया। तो ये तो हमें दिख रहा है कि एक पॉलिटिकल टसल है क्लेम करने के ऊपर कि ये किसके हैं, पटेल कांग्रेसी ज़्यादा हैं या गुजराती ज़्यादा हैं, वो लौह पुरुष हैं और वो भारतीय राष्ट्रवाद और इंडियन राइट विंग के हीरो हैं, क्योंकि वो तो इसमें क्या होता है कि कोई नेहरू के बरक्स उनको खड़ा कर रहा है, कोई गांधी के बरक्स खड़ा कर रहा है, ये तो समझ में आता है। इन सब के बीच अंबेडकर की टीकाओं को पढ़ना हमारे लिए बड़ा दिलचस्प होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, आपने बहुत विस्तार से लिखा भी है।
मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि डॉक्टर अम्बेडकर किस तरह सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ना वो तो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, ना कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे और ना हिंदू महासभा से उनका कोई लेना देना था, बल्कि ये कहें वो तीनों के ही आलोचक थे। इस जो वो तो पूरी किताब उन्होंने लिखी और अलग अलग पूरा स्टेटिस्टिक्स भी लिखी, जातियों के समीकरण भी लिखे, दुनिया भर के जो लोकतंत्र के मॉडल हैं, देशों के विभाजन के या एक साथ रहने के मॉडल हैं, उन सब की उनने व्याख्या की। बुनियादी बात जो उसमें समझ में आती है वो एक तो ये कहते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन के जो 15-20 साल हैं पूरी ताकत लगा ली है कि वो मुसलमान और हिंदुओं की एकता करा दें, और वो आगे जाके मतलब डॉक्टर अम्बेडकर को तो ये लगता है कि मुसलमानों की तरफ काफ़ी हद तक उन्होंने हाथ बढ़ाया है गांधी ने, लेकिन वो एकता हो नहीं सकी, लेकिन वो कहते हैं कि एकता की उन्होंने पूरी कोशिश की है। दूसरी बात वो जिन्ना के लिए कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो हर बार नई मांग लेके आ जाती है और उसने घोषित कर दिया है कि हमें एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए और वो किसी ना किसी तरीके से उसे लेंगे, ये उस पर आमादा है। तीसरा वो सावरकर का पूरा विश्लेषण करते हैं, जब सावरकर जेल से छूट के आ गए और उनके भाषण हो रहे हैं हिंदू महासभा के हेड के तौर पर, तो उसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने भी हिंदू राष्ट्र की मांग प्रमुखता से उठा दी है। फिर वो दोनों को और फाइन ट्यून करके उनकी व्याख्या करते हैं कि जिन्ना जहाँ खुले शब्दों में ये कह रहे हैं कि एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान होना चाहिए, वहीं सावरकर ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और डॉक्टर अम्बेडकर की व्याख्या से ही जाएं तो उसमें उस हिंदू राष्ट्र के अंदर मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक की तरह रहें। फिर इस व्याख्या को डॉक्टर अम्बेडकर आगे ले जाते हैं कि अगर आपने ऐसे हिंदू राष्ट्र की वकालत कर दी या उसका दावा पेश कर दिया कि वो हिंदुओं का है और मुसलमानों को दोयम दर्जे का रहना है, तो आपके हिंदू राष्ट्र में एक मुस्लिम राष्ट्र शामिल है। और फिर वो कहते हैं कि जो बात मुसलमान का नाम लेके जिन्ना कर रहे हैं वही हिंदू का नाम लेके सावरकर कर रहे हैं, और दोनों की मांगें देश को विभाजन की ओर ले जा रही हैं, ये उनकी व्याख्या निकलती है। फिर वो उसमें और भी बहुत सी बातें डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, अन्य देशों के उदाहरण लाते हैं, संभावनाएं तलाशते हैं, समीकरण तलाशते हैं, फॉर्मूले लाते हैं कि कैसे बन सकता है, क्या हो सकता है, कौन सी रियायतें दी जा सकती हैं, लेकिन आखिरी में जहां वो कंक्लूड करते हैं इस सारे विषय को और अपनी राय रखते हैं, उसमें वो कहते हैं कि अगर मुसलमान चाहेंगे तो पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, और ये आज़ादी से 5-6 साल पहले
1940 की बात है, हाँ
वो ये दर्ज कर रहे हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर की बिल्कुल, मैंने इतनी मोटी 500-600 पन्ने की किताब को 4-6 वाक्य में आपके सामने रखा।
इंटरेस्टिंग, अम्बेडकर का जिक्र हो रहा है तो जिन्ना का जिक्र भी आएगा, और इस एक बात को लेकर गांधी की और नेहरू की बहुत आलोचना होती है कि यदि 1937 में कांग्रेस थोड़ी सी ज़्यादा समावेशी होती प्रांतीय असेंबलीज के चुनाव के बाद, और तो शायद इतनी स्थिति नहीं होती। आप खुद भी अपनी किताब में लिखते हैं कि दरअसल 1936 में लौटे जिन्ना एक और लखनऊ समझौते की उम्मीद कर रहे थे। हाइंडसाइड विजडम सबके लिए उपलब्ध है कि अतीत में जाना और ये जज करना कि यूं होता तो क्या होता, क्या पीयूष बघेले को ऐसा लगता है कि तब कांग्रेस थोड़ा सा ज्यादा एकोमोडेटिव होती, नेहरू थोड़े से ज्यादा एकोमोडेटिव होते तो चीजें?
दो बातें इसमें बहुत हमें रुकना पड़ेगा
जी।
जो सरदार पटेल की बायोग्राफी लिखी है राजमोहन गांधी ने, पटेल लाइफ, 37 में नेहरू कांग्रेस के बॉस नहीं है। उस चैप्टर का नाम है द बॉस। कांग्रेस के बॉस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब हम गांधी और नेहरू यहाँ कह रहे हैं तो हमें कहने पड़ेगा नेहरू और पटेल एकोमोडेटिव होती, एक बात। दूसरी बात यह है कि 37 में जो हुआ उसके बाद बार बार जो पूरी रणनीति दिखती है 1916 से लेकर 1947 तक, जो भी मांग आप मान लो मुस्लिम लीग की, अगली बार जब उन्हें टेबल पर बुलाओ तो एक नई मांग लेके आएंगे। और जिन्ना के सारे आप जितना भी उनकी बातचीत हुई है उनसे घंटों बात करिए, दिनों तक बात करिए, जब समझौते के टेबल पर होगा कि क्या आप सिग्नेचर करेंगे तो वो कहते थे मैं कार्य समिति से जाके पूछूंगा, मैं इस पर मैंडेट लूंगा, वो हाँ नहीं बोलते थे। इवन विभाजन के दिन भी उनसे लगभग माउंटबेटन ने फटकार लगाई थी कि चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस समय ऐसा हमें लग सकता है कि और उदार होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद और भी बहुत उदारता दिखाई गई है, लेकिन उनका कोई हासिल हुआ नहीं। क्योंकि जिन्ना और भी आप देखेंगे तो दुनिया के और भी देश बटे हैं और ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद होकर ही बटे हैं, शायद उन्हें इस बात के लिए फिक्स कर दिया गया था कि तुम्हें इससे पीछे हटना ही नहीं, तो वो गुंजाइश होती नहीं, क्योंकि जिन्ना जो कर रहे थे वो अकेले नहीं कर रहे थे।
तो शायद के टोन में बात नहीं करते हैं, तो क्या हमारे पास बात का कोई प्रमाण है कि कोई ब्रिटिश अधिष्ठान या व्यक्ति जिन्ना को एक तसल्ली बख्श ढंग से इस बात का मैंडेट या हिदायत दे रहा था कि नहीं? तुम्हें
अभी कुछ
ग्रेट गेम को लेकर बहुत थ्योरी चलती है,
इसमें हैं किताबें उपलब्ध हैं, मैं अभी तुरंत तो चूंकि इसमें संदर्भ उनका नहीं आया तो मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन और भी किताबें जो लिखी गई हैं, आप भारत से भी लिखी हैं और बाहर से भी लिखी हैं, उनमें ये बातें बहुत तरीके से आती हैं। बल्कि नहीं, अब मैं आपको बता दूँ, ये मेनन, दो मेनन हुए ना, एक तो नेहरू जी के साथ थे, एक पटेल के साथ थे, तो जो पटेल के साथ जो मेनन थे,
जो उनके सचिव थे,
उन्होंने कहा कि ये जो भारत के
बीपी मेनन
की किताब, वो पूरी किताब मैंने पढ़ी जो सरदार पटेल कहने पर लिखी गई
जी,
उसमें ये जिक्र आता है कि बीपी मेनन साहब कह रहे हैं कि माउंटबेटन के आने से पहले जो वायसराय थे उनको एक प्रस्ताव भेजा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए और भारत का विभाजन उसमें हो जाए। वो प्रस्ताव वहाँ चला गया था और तब उस पर ध्यान नहीं दिया गया लंदन में, लेकिन जब माउंटबेटन आए तो उसके 20-25 दिन पहले उन्होंने उस प्रस्ताव को ढंग से पढ़ लिया और उसको आने के बाद उन्होंने चर्चा की, पहले पटेल साहब से अलग से सहमति ली, नेहरू से अलग से सहमति ली, जिन्ना तो चाह ही रहे थे, तो अगर और ये अंततः तो अंग्रेज सरकार के ही अधिकारी थे तो ये प्रस्ताव वहाँ से चल के आए थे, तो ये मैं एक कह सकता हूँ शायद की बात अकेली नहीं है, ये वहाँ से थे। और अगर
नहीं, थ्योरी में मुझे लगा कि आप किसी खास किताब के,
चूंकि ये संदर्भ में बहुत गए नहीं थे इसलिए, लेकिन है वो चीज़ें।
आपने राजमोहन गांधी की किताब का जिक्र किया दी बॉस, मैं दो दशक एक दशक पहले चल लेता हूँ जब गांधी बॉस है, खिलाफत का जो वो दौर है और उसके बाद उनका ऑपरेशन आता है 1919-1920 का। कई आलोचक इस बात पर कहते हैं कि टर्की के एक मूवमेंट को भारतीय मुसलमानों के साथ जोड़ना, और उसके बाद आप देखिए वो शौकत अली ब्रदर्स के पास जाते हैं जिसकी बातचीत पूरी है, डू यू थिंक सर कि इट अ रॉन्ग शॉट?
आलोचक बड़ी विचित्र किस्म की आलोचनाएं करते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी आलोचना इस बात की होती है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था, वरना देश आज़ाद हो गया होता
छोराछोरी के बाद।
तो एक बड़े वर्ग को अगर इतना लगता है कि वो आज़ाद होने ही वाला था तो ये दूसरों आलोचकों को वर्ग तो वैसे ही खारिज हो जाता है। लेकिन अब मैं आलोचकों से आलोचकों को टकराने के बजाय अपनी बात कहता हूँ, और मैं वो बात कहता हूँ जो गांधी ने कही है। उन्होंने ये समझा, देखा, जाना कि सभी धर्मों की, सभी क्षेत्रों की, सभी भाषाओं की एकता हमारी आज़ादी की बुनियादी शर्त है, और हिंदू और मुसलमान दो बड़ी कौम हिंदुस्तान की हैं, इनकी हमें एकता चाहिए। उनने ये भी आइडेंटिफाई किया कि इनके झगड़े के विषय क्या क्या हैं। तब उनने देखा कि अगर मुसलमानों के दिल को ये विषय छू रहा है तो उसकी समस्या की घड़ी में अगर हिंदू हाथ बढ़ाएगा तो दिल से दिल मिलेंगी। हमारे पड़ोसी की यहाँ कोई संकट है पानी का तो मैं उसे एक तो हो सकता है पानी पर लेक्चर दूँ कि तूने बोरिंग नहीं कराई थी पहले, तूने पानी का बिल नहीं चुकाया था, तूने, तेरी ये गलतियाँ थी, जो आज आलोचक कह रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन में कोई दमी नहीं थी, खलीफा पीछे हट गया, वो एक बात हो गई, वो लॉजिकल आप कर सकते हैं। लेकिन पड़ोसी दुखी था और प्यासा था, मैंने कहा मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, और उसकी हिंदू मुस्लिम एकता इस आलम तक गई थी कि बम्बई में ऐसी स्थितियाँ भी आई कि एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को, पारसीज को हिंदू मुसलमानों ने मिलकर पीट दिया।
और वो हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ तक जाती है कि इसी पुरानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में जुलूस निकल रहा है और उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों सामने खड़े हैं, गोरखा सैनिक गोली चलाते हैं और लोग मारे जाते हैं, उसमें 5 मुसलमान और 4 हिंदू मरते हैं। तो भारत की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमान का खून एक साथ बहता है। तो उस गांधी का उद्देश्य हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान के लोगों की एकता है। उन्हें कोई एकेडमिक्स में ये बहसें नहीं करनी थी लाइब्रेरी में बैठ के, और उसके रिजल्ट्स भी आए हैं। तो अगर रिजल्ट्स से देखें तो ये बहस आगे भी चल सकती है, आलोचनाएं की जा सकती हैं, लेकिन आलोचक बताएं कि वो क्या करते तो कुछ बात बने।
ये बहुत ब्लैक एंड वाइट हो रहा था और मैं इसे थोड़ा ग्रे पर लेकर आता हूँ। हालांकि मुझे इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी में असद जैदी का मंगलेश डबराल पर लिखा हुआ लेख याद है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि ग्रे के संदर्भ भी ब्लैक एंड वाइट से ही आते हैं। फिर भी मैं इसे थोड़ा इतर करता हूँ। गांधी आपने इसमें लिखा कि सांप्रदायिकता अंततः उनकी जान लेकर के ही मानी। गांधी की सांप्रदायिकता के जो 3-4 बुनियादी पहलू हैं, उससे लड़ने के उनके पास क्या टूल्स थे? क्योंकि आप जब ये इस बात को कहते हैं कि हड़पने की कोशिश की जा रही है और सांप्रदायिक माहौल की तरफ इशारा करते हैं, तो वो टूल्स के बारे में हमें थोड़ा बताइए, ताकि दर्शक समझे कि गांधी की सांप्रदायिकता की चुनौती से लड़ने की योजना क्या थी, प्रोजेक्ट क्या था।
ये बड़ा सटीक प्रश्न पूछा आपने। जब ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन उरूज पर चढ़ा, अपने बहुत तेज़ी चल रहा था, तो उसमें ये भारत माता की जय का नारा लगता था और मुसलमान लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे। मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और गांधी जी वगैरह मंच पे होते थे। गांधी जी के कान खड़े हुए कि ये सभाएं तो हो रही हैं हिंदू मुसलमान की एकता के लिए, लेकिन ये नारे एक दूसरे से टकराते हुए दिख रहे हैं। तो उन्होंने नारा बदला और आम सहमति से, जैसा कि वो करते थे, हिंदू मुसलमान की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी शौकत अली की जय, उन्होंने ये नारे इस तरह से बदले। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि धर्म हमारी आस्था का विषय है, हमारे आचरण का विषय है। तो हम जितनी और ज़्यादातर आध्यात्मिक जो पक्ष है धर्मों के, वो तो एक से होते हैं, उसमें कोई झगड़ा है ही नहीं। कुछ बातें होती हैं, कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, उसको हम दरकिनार करें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों ना बनाएं। उनने कभी हिंदू से ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान के घर खाना खाओ, या मुसलमान से नहीं कहा कि तुम हिंदू के घर खाना खाओ। उन्होंने इंटर जो दोनों धर्मों में शादियां कराने के बारे में कोई शुरू में बात नहीं कही कि होना ही चाहिए। तो जिन चीज़ों से लोगों को बहुत दिक्कत होती थी लेकिन समाज को दिक्कत नहीं होती थी, उनसे उनने कहा कि आप अपने अपने धर्म की मेंटेन करो। और ये उनने जातिवाद पर भी किया। जातिवाद में उनने इंटरकास्ट मैरिज का शुरू में सपोर्ट नहीं किया है, जातियों की उन्होंने बहुत बुराई नहीं की है, वर्णाश्रम व्यवस्था की भी शुरू में गांधी ने बुराई नहीं की है, लेकिन गांधी ने अछूत प्रथा की, अस्पृश्यता की शुरू से बुराई की और कहा कि रावण से ज़्यादा राक्षसी है। तो गांधी जी जैसे घर का एक बुजुर्ग होता है, एक बड़ा व्यक्ति होता है, जो लीडर होता है, उसके घर में 4 लोग हैं, 4 कैपेबल हैं, तो 4 के स्वभाव में जो समानता है जिससे एक यूनिटी बन सकती है, उसको एक साथ लाओ और अपनी विविधता को अलग अलग रखो, अपने घर में संरक्षित करो। इस लाइन पर गांधी जी चले। दूसरा, उन्होंने देखा कि मेन झगड़ा होता है ये बकरीद पर गाय काटने को लेकर, उसको उन्होंने मुसलमानों से बार बार कहा कि जब गाय काटना आपके धर्म में अनिवार्य नहीं है तो आप गाय काटना छोड़ दीजिए। ये वो मुसलमानों से कहते थे। हिंदू से वो दूसरी बात कहते थे। हिंदू से ये कहते थे कि गाय पर अगर मुसलमान अत्याचार कर रहा है तो तुम भी तो अत्याचार करते हो, तुम भी तो उसका दूध चूस चूस कर निकाल लेते हो, बूढ़ी होने के बाद बेचता कौन है गाय कटने के लिए, और तुम्हें इतनी गाय रक्षा की चिंता है तो तुम उसको बचाते हुए अपने प्राण दे दो। और वो यहाँ तक जाते थे कहते हुए कि ये गो रक्षा सभाएं नहीं हैं, ये गो हत्या सभाएं हैं, ये गोवध है, क्योंकि आपका मूल उद्देश्य गाय की रक्षा करना नहीं है, मूल उद्देश्य मुसलमान से लड़ना है। और जो पहला उपवास गांधी जी करते हैं जेल से लौटने के बाद, खिलाफत असहयोग आंदोलन के बाद,
21 दिन
का, उसके आखिरी में मौलाना मोहम्मद अली बूचड़ खाने से एक गाय छुड़ा के लाते हैं और वो गांधी को गिफ्ट करते हैं। तो ये जब धर्म में इतने पुल हैं, इतने रिश्तों में प्यार है, तो हम इस तरह से उसको जोड़ सकते हैं। ये गांधी के कुछ तरीके थे।
अच्छा, एक बात बताइए पीयूष जी, गांधी के ये सब तरीके थे, सबसे ज़्यादा प्रभाव भी था और कई इतिहासकारों ने इसको लिखा भी है, आप भी जिक्र करते हैं कि विभाजन तक आते आते गांधी का वो प्रभाव और नियंत्रण गुम जा रहा था। गांधी एक बड़ी नैतिक सत्ता पर विराज कर ये सब चीज़ें कहते थे, वो अपनी एक्टिविटीज़ में भी वो दिखाते थे। तो जब यहाँ पावर का ट्रांसफ़र चल रहा था तब वो नोआखली और सब जगह घूम रहे थे, पर जब आप किसी के इतने बड़े प्रभावकारी व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इस असफलता पर भी खूब जिक्र होता है कि अंततः गांधी और उनके निर्देशन में काम कर रहे लोग चूके कहाँ, ये इस चीज़ को चेक क्यों नहीं किया जा सका सांप्रदायिकता के प्रश्न को? क्या और रचनात्मक होना चाहिए था, क्या कहाँ गड़बड़ थी?
गड़बड़ नहीं कह सकते, मकान तो बहुत अच्छा बनाया गया था, एक इंसान के में जितनी ताब हो सकती है उतना सब किया गया था। लेकिन जब सब तरफ से ही तय कर लिया जाए कि ये करना है और अंदर की ताकतें भी लग जाएं और बाहर की ताकतें भी लग जाएं, तो आदमी हारता है। और इस प्रश्न को हम बहुत व्यवहारिक दृष्टि से, जो हम दुनियावी दृष्टिकोण से देखेंगे, तो नहीं समझ में आएगा। इसके लिए वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से गांधी ने शुरू किया है। गांधी के जहन पर जिस किताब का बहुत असर है वो है डेथ एंड डिफेंस ऑफ सोक्रेटिस, जिसका उन्होंने पहली किताब जिसका उन्होंने अनुवाद किया, एक सत्याग्रही की डायरी। और उसको जब वो बताते हैं तो हरिश्चंद्र के उससे तय करते हैं। तो सोक्रेटिस के साथ क्या हुआ? सोक्रेटिस उस जमाने में रोम में थे, पार्लियामेंट थी, वो उसको बनाने वालों में से थे, और उनको अंत में जहर का प्याला दिया जाता है और वो मरते हैं। ईसा मसीह के साथ क्या होता है? आज पूरी दुनिया में इतना बड़ा ईसाई धर्म हो गया, लेकिन उस समय उनके विरोधी इतने ताकतवर थे कि उनको देके मार दिया गया। तो उसमें जो बुनियादी बात डेथ एंड डिफेंस ऑफ सोक्रेटिस में प्लेटो ने सुकरात के मुँह से कहलाई है, वो ये कहलाई है कि ना तो जीना बहुत महत्वपूर्ण है और ना मरना बहुत महत्वपूर्ण है, बात है कि आप सत्य के साथ खड़े होते हो कि नहीं रहते हो, आपने जीवन सत्य को समर्पित किया कि नहीं किया। तो गांधी मान लो, हो सकता है हिंदुस्तान आज़ादी नहीं होता, या हो सकता है हिंदुस्तान बंटवारा नहीं होता, इन सबसे गांधी बहुत महान नहीं हो जाते। गांधी महान इसलिए हुए कि जिस मूल्य के लिए उनने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता होना चाहिए, समाज में सौहार्द होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, मैं भगवान के भरोसे रहूंगा, जिन मूल्यों पे जिए उनके लिए उनने अपने प्राण त्याग दिए। हम बहुत चीज़ों में जा सकते हैं कि वो बंटवारा कैसे हुआ, तो गांधी का इस किताब में भी मैंने लिखा, प्यारेलाल जी ने बहुत अच्छा वर्णन पूरा पूर्णाहुति में किया है कि आखिरी समय में वो कह रहे हैं कि जनता मेरे साथ नहीं है,
असहाय दिखते हैं थोड़े से।
तो ये लाचारियाँ तो भगवान कृष्ण के साथ, अगर महाभारत में व्यास जी ने ये कराया कि भगवान कृष्ण अकेले पड़े हुए हैं और एक बहेली के तीर से उनकी मृत्यु हो जाती है,
बिल्कुल,
तो शायद ये ट्रेजडीज के लिए मनुष्य अभिशप्त है और उस अभिशाप से गांधी जी भी नहीं बच सके।
जिस अभिशाप की आप बात कर रहे थे, और मैं अब बिल्कुल शुरुआत में एक बार दोबारा लोकेट करना चाहूँगा, 1915 में जब गांधी भारत आते हैं, वो ऐसा दौर है जब बिपिन चंद्र पाल संन्यास ले चुके हैं, 6 साल की जेल काट कर आए हैं अरविंद घोष, और तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियाँ रहीं जिसमें हमारा आज़ादी का जो आंदोलन था वो, क्योंकि स्वराजाइट्स उससे पहले आए, उससे पहले एक और बंग भंग का विद्रोह हुआ था। गांधी के पास भी दो भारत थे, जिसकी आप इस किताब में बात करते हैं, जो आज तक बहस चलती है इंडिया वर्सेज भारत की, गांधी के दो भारत के बीच में से समन्वय कहाँ पर था जो उन्होंने खोजा?
ये बहुत बुनियादी सवाल है और ये आज की राजनीति के लिए भी उतना ही प्रासंगिक सवाल है। गांधी जी के आने के पहले राजनीति का मतलब होता था कि कुछ पढ़े लिखे बैरिस्टर, संपन्न कुछ जमींदार लोग भी एक अच्छे कमरे में बैठें, वहाँ बैठ के देश की चिंता करें, उस चिंता को एक कागज़ पर लिखें और ज्ञापन की शक्ल में ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दें, या फिर कहीं कोई दिक्कत लोगों को है तो बैरिस्टर के तौर पर अदालत में खड़े होकर उसका बचाव करें, और एक दिखनौसी किस्म की संसद जो थी, असेंबली थी, वहाँ कुछ जो अंग्रेज़ों के इच्छा से ही चुने गए थे भारतीय लोग, भारत के प्रति प्रेम रखने वाले लोग थे, अच्छे लोग थे, वो वहाँ खड़े होकर उसकी आलोचना करें एक हद तक, लेकिन उनके पास कोई डिसाइसिव पावर ना हो। गांधी ने इस आर्म चेयर पॉलिटिक्स को ख़त्म किया। ख़त्म कैसे किया? कि जिन्ना की लड़ाई भी यहीं से हुई थी उनसे, कि जब भीड़ के मजदूर गरीब जिनके पसीने की गंध भी आ रही है, धूप भी है, धूल भी है, वहाँ जब बैरिस्टरों से बैठने के लिए कहा गया तो उन्हें असहज हुआ, उसमें जिन्ना सबसे ज़्यादा थे। अब इसमें करें कैसे, क्योंकि आम जन तो निरक्षर था, संपन्न भी नहीं था, गरीबी थी, भुखमरी थी, उसे कैसे खड़ा किया जाए? तो ये जो बैरिस्टर लोग थे जो पढ़ के आए थे विदेशों से, चाहे वो सुभाष ICS हों या सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले वकील हों, चाहे मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के हों, देशबंधु चित्तरंजन दास कलकत्ता के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले वकील हों, तो ये जो मिडिल क्लास था, अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास था, उसको उन्होंने पहले सामान्य बनाया। इन सबसे कहा तुम बैरिस्टरी छोड़ो, इन सबसे कहा तुम अपने महल छोड़ो, प्रैक्टिस छोड़ो, गरीबी में रहो। तो जो टॉप ब्रेन था, जो कि लग्जरी में जा सकता था, जो कंफर्ट में जा सकता था, जो पैसा कमाने की ओर जा सकता था, उसको उन्होंने जनोन्मुखी बनाया। तो ये सबके सब बहुत सामान्य धोती कुर्ते में आपको दिखाई देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ तक लिखा कि जब वो पहली बार आए लंदन से इस्तीफा देके और सीधे मणिभवन बम्बई में गए गांधी जी के आवास पर, तो वो सूट टाई में थे
और वहाँ सब तरफ खादी बिछी हुई थी, गांधी जी खादी पहने हुए हैं, खादी के पर्दे, खादी का ये लिहाफ, सब चीज़ें। तो वो कहते मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो इन लोगों को आम आदमी तक लाना और उस आम आदमी में ये जगाना कि कोई भगवान नहीं आने वाला है और कोई बंदूक से तुम्हें नहीं लड़ना है, तुम्हें सिर्फ ये जो सरकार है, जो सत्ता है, ये तुम्हारे सहयोग से टिकी हुई है। तुम इसे टैक्स देते हो इसलिए ये पनपती है, तुम अपने बच्चों को पुलिस में भर्ती करते हो तो वो तुम्हें मारते हैं, तुम अपने बच्चे को वकील बनाते हो तो वो तुम्हारा ही शोषण करते हैं। तो ये सहयोग से टिकी हुई सत्ता है, इससे तुम जिस दिन असहयोग कर दोगे और मन से मान लोगे कि हम गुलाम नहीं हैं, उस दिन तुम बाहर आ जाओगे। और इस बात को समझाने में वो तमाम एलीट जिन्हें उसने मध्यम वर्ग से लाया था उनको जोड़ दिया और साथ साथ खुले मैदान में बिठाना शुरू किया। तो हमें लगता है कि भारत के इतिहास में वो एकमात्र समय रहा जब एलीट और आम जन इतने घुल मिल के साथ चले और एकमेक हो गए।
सुभाष चंद्र बोस लंदन से लौटते हैं और बम्बई पहुंचते हैं, हम भी बम्बई चलते हैं। माउंट प्लीजेंट रोड, जिन्ना और गांधी की मुलाकात। मेरे प्यारे जिन्ना भाई, मैं आपके लिए खाकरा लेकर आया हूं। अपने सहयोगियों को डांटते हैं कि अलग से बोतल ना भिजवाया करो ताकि ये संदेश ना जाए कि गांधी किसी मुसलमान के यहाँ खाना या पीना नहीं करते। गांधी और जिन्ना के बीच का जो संवाद हुआ उसमें कौन सी जगह से आपको लगता है सर, क्योंकि लंबी मीटिंग चली है, वो कौन सी जगह से आपको लगता है कि यहाँ से बात टूट गई थी? क्योंकि वो संवाद भारत में, अगर वो कहते हैं ना एक वाटरशेड मोमेंट, तो वो संवाद एक वाटरशेड मोमेंट हो सकता था इंडियन हिस्ट्री का, जहाँ से बात।
इसको मैं थोड़ा और शुरू से शुरू करता हूँ, बात टूटने से पहले शुरू करता हूँ। गांधी चले तब क्या हुआ? सेवाग्राम से गांधी जा रहे हैं, हिंदू महासभा सावरकर एंड कंपनी उनका जबरदस्त विरोध कर रही है, उनके जाने के लिए उनके आश्रम को हिंदू महासभा के लोगों ने घेर लिया है चारों तरफ से। गांधी पुलिस के लिए मना कर रहे हैं लेकिन अंग्रेजी शासन था तो पुलिस आती है। गांधी निकलते हैं तो उनको बचाने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके उन लोगों को थाने ले जाया जाता है। थाने में उनसे पूछा जाता है कि भाई आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो, क्या दिक्कत है? तो वो कहते नहीं, हम ये सब में नहीं चाहता गांधी जिन्ना से बातचीत करें। उनमें से एक आदमी और गिरफ्तार होता है, उसके पास इतना बड़ा खंजर होता है, और जो उनका हेड होता है उससे जो पुलिस वाला है वो कहता है, जो पुलिस का एसपी टाइप का कोई आदमी है, कमांड सार्जेंट है ऐसा, जो भी पूछ रहा हो, वो कहता है कि अगर ये गांधी जी और सावरकर के बीच का बात है तो दोनों बड़े नेता मिलकर बातचीत करके सुलझाएं, आप लोग इसमें क्यों आ रहे हो? तो वो जो हेड है वो कहता है इससे निपटने के लिए तो हमारा जमादार ही काफ़ी है, जिसके पास खंजर था, और वो जमादार कोई और नहीं था, नाथूराम गोडसे था। तो सन 44 में जब भारत का विभाजन ना हो सके इसके लिए गांधी जी जिन्ना से बातचीत करने के लिए चल रहे हैं, तो उस दिन भी नाथूराम गोडसे खंजर लेके उनके आश्रम के बाहर उनका मर्डर करने के लिए खड़ा हुआ है। एक बात हुई, अब हम जाते हैं जिन्ना के आवास पे। वो बातचीत तो बिल्कुल वैसी है, लंबी 20-21 दिन की बातचीत है, उसके बाद भी बातें हैं, 45 में भी बातें हैं, वो तो आखिरी तक बातें हुई, लेकिन उसका यह आता है कि पंचों की राय कुछ भी हो खूंटा यहीं गड़ेगा। जिन्ना कह रहे हैं कि तुम ये मान लो कि तुम हिंदुओं के लीडर हो और मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, ये मान लो तभी बात होगी। सारे तर्क, कितने तर्क सब इसमें लंबे लिखे गए हैं, वो सब हैं, लेकिन वो जब इससे, और इसका मतलब है कि तुम हिंदू और मैं मुसलमान, माने बट गया देश, तो वो कभी बात हो रही थी लेकिन बात में कुछ हो नहीं रहा था, ये गोल गोल घूमना था, दो समांतर बातें चली जा रही थी, वो अलग बात कह रहे हैं, वो अलग बात कह रहे हैं, और उसमें राजा जी का फॉर्मूला भी बीच में आता है, उसमें अन्य सलाहें भी आती हैं। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि शायद कोई ऑर्डर था कि तुम्हें नहीं हिलना है इस जगह से, तो वो वहीं खड़े रहे, वो हिले ही नहीं, उसमें कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं।
ये एक बहुत ही रोचक प्रसंग है आपकी किताब में, हैदरी मेंशन में जो कुछ होता है ये बड़ा दिलचस्प है देखना। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है, कराची में मोहम्मद अली जिन्ना है। 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त का दिन भारत की आज़ादी की घोषणा होती है, नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं, और उसी रात हैदरी मेंशन में समान संख्या में हिंदू और मुस्लिम स्वयंसेवक उस टूटी फूटी इमारत की, जिसकी खिड़कियों के कांच पत्थरबाजी से टूटे हैं, जिसको कुछ दिनों पहले एक हिंसक भीड़ ने घेर रखा था कि जब डायरेक्ट एक्शन हो रहा था एक बरस पहले और मुसलमान हमें इसी कलकत्ता में दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे, तब आप कहाँ थे? इसी सुहरावर्दी के इशारे पर और इसी शहीद सुहरावर्दी के कहने पर आज आप नोआखाली जाने के बजाय यहाँ आ गए हैं। वो मंजर बताइए, जिस तरीके से आपने बहुत ही शब्द चित्रात्मकता के साथ वो पूरा वर्णन किया है, गांधी की दलीलों को, नौजवानों के सवालों को प्रस्तुत किया है।
वो पूरा वाकया 46 से ही, नोआखाली से ही शुरू होता है एक तरह से देखें, और गांधी जी जब आते हैं तब भी उन्हें कलकत्ता ही आना था 46 में, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हिंदुओं को इतने बड़े पैमाने पर वहाँ कत्लेआम किया गया है, तो गांधी वहाँ जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। एक प्रसंग तो इतना वहाँ का नोआखाली का है कि एक कुत्ता आ जाता है गांधी जी के पास, और वो बार बार ऐसी कोशिश कर रहा है कि गांधी उसके साथ चलें। गांधी महसूस करते हैं कि चाहता है कि मैं इसके साथ चलूं। तो गांधी जी उस कुत्ते के पीछे पीछे, वो सब छोड़ के कुत्ता आ गया कि गांधी जी पीछे पीछे, वो एक घर में जाता है। उस घर में उस कुत्ते के मालिक की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई है। तब गांधी जी उस शव का अंतिम संस्कार करते हैं। इस तरह की घटनाएं उसमें होती हैं। और यहीं आते हैं गांधी जी ने मुसलमानों के हाथ से, इसका गांधी जी की पौत्री सुमित्रा कुलकर्णी जी ने महात्मा द लास्ट फेज अनमोल विरासत किताब 3 खंड में उसमें वर्णन पूरा किया है कि हिंदू मंदिरों में मूर्तियां लगवाने का काम भी गांधी जी ने मुसलमानों के हाथ से किया। गांधी जी वहाँ कमेटी बनाते हैं कि एक हिंदू और एक मुसलमान लड़का इसमें शामिल हो। बहुत गाँव में नहीं मिली, हर गाँव में उनकी कोशिश होती है कि मैं किसी मुसलमान के घर में रुकूं, जो नहीं मिलता उन्हें। उन्हें गालियां मिल रही हैं, उनको तिरस्कार हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। लेकिन वो नोआखाली निपटा के जैसे तैसे जाते हैं, तब तक बिहार शुरू हो जाता है। बिहार में रिवर्स, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा है। और गांधी वहाँ लिखते हैं कि यहाँ का कृत्य तो नोआखाली से ज़्यादा भयंकर है। फिर गांधी वहाँ से कश्मीर जाते हैं। कश्मीर में सब बातचीत कर रहे हैं, देश आज़ाद हो चुका है। कश्मीर से लौट रहे हैं तो वह कस्बा
आज़ाद नहीं, तब 3 जून था, आज़ादी का प्रस्ताव आ चुका था।
तो कश्मीर,
कश्मीर से जम्मू, जम्मू से रावलपिंडी,
और वो जहाँ जहाँ आते हैं सबसे ज़्यादा वाह का आया था दृश्य। जब वहाँ के जो निराश्रित हिंदू हैं वो कहते हैं हमारी रक्षा क्या होगी, तो वो सुशीला नैयर को वहाँ छोड़ देते हैं
कैंप वाले कैंप में,
ये तुम्हारी रक्षा करेगी। लोग मजाक करते हैं कि गांधी जी की तोप छोड़ गए हमारे लिए। और वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से फिर यहाँ। अब चेंज सीन हुआ है कि 1946 में कलकत्ते में हिंदू ज़्यादा मारे गए थे शुरू में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मुस्लिम लीग का था और अधिकारी मुसलमान थे। अब पार्टीशन के बाद जब गांधी आ रहे हैं तो वहाँ लगभग ये हो गया है कि सारे हिंदू अधिकारी हैं और मुसलमान बड़े पैमाने पर
पाकिस्तान में चले गए।
तो एक साल पहले जो रो रहे थे वो आज कत्ल कर रहे हैं, जो मार रहे थे वो आज रो रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर शहीद सोहरावर्दी सारे हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था वो गांधी के बगल में बैठा है, उसे एक आदमी मार रहा है। तो इसमें बारीकी से बात यह है पूरे दृश्य में कि गांधी जहाँ जो पीड़ित हो रहा है उसके साथ खड़े हो रहे हैं, चाहे जब मुसलमान होता तो मुसलमान और जब हिंदू होता हो तो हिंदू, और दोनों से वो एक ही बात कहते हैं कि अगर इसने मारा है तुझे और तुझे लगता है कि इसने कोई जुल्म किया, तू मुझे मार के अगर इसका प्रतिशोध ले सकता हो तो ले ले। और सबसे कठिन काम जो गांधी करते हैं, जो कोई मसीहा ही कर सकता है, कि जैसे कोई हिंदू आया और उसने कहा कि मेरी बेटी को एक मुसलमान ने मार दिया पाकिस्तान में, तो वो उससे कहते हैं कि तू एक कोई किसी हिंदू ने किसी मुसलमान बच्ची को मार दिया जो अनाथ हो, तो तू उस मुसलमान की बच्ची को पाल ले। ये बात आज कोई भी तमाम लोग कथा बांच रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं कह सकता और ना मनवा सकता है। वो यहाँ दिल्ली के किंग्सवे कैंप जा रहे हैं, पूरे भारत में गांधी घूम रहा है सिर्फ नैतिक बल से। 2 लड़कियाँ उनके साथ अकेली हैं, कुछ बिल्कुल अपने उनके साथ के कार्यकर्ता हैं जो पॉलिटिकल नहीं है। वहाँ कोई नेहरू नहीं है, वहाँ कोई पटेल नहीं है, कोई मौलाना आज़ाद नहीं है, गांधी हैं, उनके आश्रम के सहयोगी हैं। और मानवता की असीम शक्ति की परीक्षा है जो वो बार बार देते हैं, और हम देखते हैं कि उसमें बिल्कुल ऐसी घटनाएं जब हम पढ़ते हैं कि जो हम यकीन ही नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा आदमी जो डंडा मारने को आया है, जो गांधी के ऊपर रेवड़ियाँ फेंक रहा है, वो उन्हें प्रणाम कर लेता है। कोई महिला जिसका बच्चा मर चुका है, जो बहुत दुखी है, फिर उसे तसल्ली मिल जाती है। एक वर्ग मुस्लिम लीग का और एक वर्ग जिसने गांधी की हत्या की, इनको छोड़ के बाकी सब भावनात्मक रूप से गांधी से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं जुड़े, इनने अपना काम करके दिखाया।
RSS का शिविर, मुख्य अतिथि महात्मा गांधी, शहर दिल्ली, उस भाषण को सब अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं, आपकी क्या व्याख्या है?
मैं व्याख्या नहीं करूंगा, भाषण उसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ है
जी, वर्बेटम।
तो एक तो उसकी व्याख्या प्यारेलाल जी ने की है। जब गांधी जी वो व्याख्यान वहाँ दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो प्यारेलाल जी ने उसका और विस्तार से लिखा कि उसके बाद में उनसे पूछा गया कि आप कहते हैं कि अहिंसा होनी चाहिए, लेकिन गीता के 4th अध्याय में तो लिखा है कि पापी की हत्या कर,
भाषण के बाद जो सवाल जवाब का क्रम था, तब एक स्वयंसेवक ने पूछा
तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। तो गांधी जी ये कहते हैं कि भाई दंड जो गीता महाभारत में, गीता में तो भगवान कृष्ण दे रहे हैं, जो सब कुछ हैं, सृष्टि के रचयिता भी हैं, संहार करता है, तो उन्हें अधिकार है। तुम कैसे ये कृष्ण बने जा रहे हो, तुम्हें थोड़ी ही अधिकार हो गया है, और डेमोक्रेसी है जो हमने नए निज़ाम अपनाया है, इसमें तो अदालत ये बात करेगी। फिर उसमें कोई धीरे से कहता है कि ये आरएसएस के लोगों ने वहाँ के जो शरणार्थी कैंप था उस कस्बे में इन्हें बड़ा मदद की है, बहुत सहयोग पहुँचाया है। तो गांधी जी कहते हैं हाँ हाँ वो तो पहुँचाया है, लेकिन ऐसी मदद तो मुसोलिनी और हिटलर के लोग भी किया करते थे, ये उन्होंने यहाँ दिलाया। फिर वो कहते हैं कि आपके जो गुरुजी ने हमसे वादे किए हैं, मैं इन पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन अगर ये झूठे निकले तो ये अच्छा नहीं होगा, ना देश के लिए ना आपके लिए। तो वो बार बार उनसे, जो मैंने शुरू अपने इंटरव्यू हुआ कि उनके हिंदुत्व जो सफ़ेद धोती पे भगवा डालने की कोशिश है, उनने ऐसी कोई बात नहीं कही। उनने यही कहा कि बड़ी कौम को और बड़प्पन दिखाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम समान है, और लगभग फटकार के और या आगाह करके उन्हें आए हैं। हाँ, गांधी जी की एक बात रही जो किसी भी महान पुरुष की हो सकती है, हम आप जैसे लोगों में हो सकता है, आप में हो, हम जैसे में तो नहीं आ सकती, कि अगर कोई कहता है कि मैं सत्य के मार्ग पर चलने को तैयार हूं, तो वो उसे हर बार मौका देने को तैयार हैं, चाहे वो 10 बार उनके साथ धोखा दे। उनने अपने प्राण भी दे दिए, लेकिन आखिर तक जो इनने ऑन रिकॉर्ड एक पूरा वर्णन इसमें आया होगा, जब गांधी जी की सभाएं हो रही हैं, एक दिन एक लड़का आता है और विरोध करता है, अगले दिन 3 लड़के आते हैं वो विरोध करते हैं, फिर उसके बाद 30 लोग खड़े होकर उसका विरोध करते हैं। उसके अगले दिन गांधी जी उस सभा के अंत में या अगले दिन गांधी जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये जो विरोध हो रहे हैं इसके पीछे एक बड़े संघ का हाथ है। अब उस संघ का हाथ क्या है, ये जो हरिजन कॉलोनी में गांधी जी रहते हैं, सामने आरएसएस की शाखा लगती है, वहीं सब मिलना जुलना है, सब बातें हैं। तो ये पुष्टि कैसी होती है कि वो आरएसएस है, क्योंकि अगले दिन आरएसएस इसका खंडन करता है कि नहीं, ये हमने नहीं किया है, ये हमारे लोग नहीं है, और उसके खंडन के बाद लोगों का आना रुक जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बार बार, कई बार जब आरएसएस का सवाल आता है तो मैं नेहरू जी को कोट कर देता हूँ कि नेहरू जी ने ये कहा कि जब आरएसएस वाले कहें कि मैं पूरब दिशा में जा रहा हूँ, तो आपको पूरब के अलावा बाकी 3 दिशाओं में उन्हें ढूंढना चाहिए। इस अंदाज में नेहरू जी ने आरएसएस को व्याख्यात किया है।
आप इस सवाल के जवाब में हिटलर और मुसोलिनी का जिक्र कर रहे थे, किताब में तो आप ये प्रसंग नहीं लाए आरएसएस के भाषण वाले में।
वो जो पिछली चर्चा आपसे हुई थी नेहरू जी वाली किताब में वो सारा दर्ज है प्रसंग,
क्योंकि किताब में जब आप गांधी के भाषण
शब्द पे आप चले गए,
हाँ,
तो मैंने इसीलिए कहा कि प्यारेलाल जी ने जो व्याख्या की मैं वो पूरी बता देता हूँ, और नेहरू जी वाली किताब में आपसे डिस्कशन में हुआ
जी
था,
जी
वो पूरी
क्योंकि इस किताब में ये नहीं है,
उसमें ये नहीं था, इसलिए मैंने इसमें पूरा डाल दिया कि अब आदमी बरबेटम उनके मुंह से सुन लें।
जी
मैं आपसे एक व्याख्या की और गुजारिश करूंगा। अगस्त 1921 खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन हो रहा है, यानी असहयोग आंदोलन। उसी वक्त केरल के मालाबार इलाके में मोपला विद्रोह होता है, जिस पर वीर सावरकर ने बाकायदा किताब भी लिखी है। आप ये जिक्र कर रहे थे पिछले सवाल में सौरभ सर के, कि गांधी जहाँ पर संकट आता है या जहाँ पर जो पीड़ित पक्ष उनके पास जाते हैं, इनफैक्ट वो अपने मरने के, मतलब जब उनकी हत्या हुई है उस वक्त तो वो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे। गांधी मोपला क्यों नहीं गए, कई आलोचक इस बात का सवाल पूछते हैं। गांधी उस असम के दौरे पर थे, क्या गांधी मोपला विद्रोह पर चुप थे या गांधी ने उसका किस तरह विरोध किया, और मोपला विद्रोह क्या था इसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों।
जब असम के जो मेरे पास जो व्हाट्सअप आते रहते हैं इस तरह के, मोपला पे गांधी कुछ नहीं बोले, उन्होंने मुसलमानों के अत्याचार को सही कहा, उन्होंने धर्मांतरण को सही बताया, ऐसे व्हाट्सअप मेरे पास कुछ मैंने देखे, जिससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इसको पढ़ूं और इस किताब में लिखूं। गांधी जी ने असम से ही लिखा है, जो उसमें दर्ज होंगे शुरुआती पत्र उनके आ रहे हैं, जो कि नवजीवन में और यंग इंडिया में छप रहे हैं। वो उस समय मान लीजिए कि आज जैसे आप
4 सितंबर 1921 को उनकी चिट्ठी छपी थी,
आप नवजीवन जैसे इतने बड़े चैनल में आप लोग बैठे हैं, आप कोई बात कहते हैं तो पूरा देश सुनता है, इस तरह से वो बात वहाँ वो गांधी जी कह रहे हैं। और वो शुरू में तो ये कहते हैं डिटेल्स मेरे पास नहीं है, फिर उसकी पूरी जाँच पड़ताल होती है, जो इस किताब में निकल के आता है कि लड़ाई कहाँ से शुरू हो रही है। और गांधी ये भी लिख रहे हैं कि उन पर उतना असर हमारा खिलाफत का नहीं है, अभी तक हमारा आंदोलन वहाँ पहुँचा नहीं, उतनी अहिंसा हमारे पास पहुँची नहीं। वहाँ के मजदूर जो वर्ग है वो मुसलमान है, जमींदार वर्ग है वो हिंदू है, झगड़ा ये शुरू होता है ये रेवेन्यू वाले मामलों से कुछ शुरू होता है। और जहाँ से ट्रिगर होती है पूरी घटनाक्रम, कि एक कचहरी में बहुत सारे मुसलमानों को बिठाया जाता है और फिर उन पर प्रशासन अंधाधुंध गोलियाँ चला देता है। मान लीजिए कि जैसे अपना जलियांवाला बाग कांड है, छोटे स्वरूप में वहाँ पर हो रहा है, उससे यह आंदोलन उग्र होता है। इसमें जो जमींदार वर्ग है, जो स्वतः ही शासन के साथ है, वो उनका सहयोग करता है। तो शुरू में आंदोलन सिर्फ प्रशासन और सेना के खिलाफ है, अंग्रेजों के खिलाफ है, और उसमें हिंदुओं पर नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद से और इनके सहयोग थोड़ा से बाद से वो हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन उसमें होता है, हिंदू बड़े पैमाने पर मारे जाते हैं, धर्मांतरण होता है, ये सारी घटनाएँ वहाँ हुई। अब आरोप ये लगता है गांधी जी ने इन घटनाओं का सहयोग किया, गांधी जी ने पूरे उसमें बार बार आपको मिलेगा वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण तो मैं किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकता, ये बातें मैं किसी सूरत में नहीं मान सकता। अब बात आती है कि वो वहाँ गए या नहीं गए। मेन आंदोलन हिंदुस्तान में हो रहा है असहयोग का, पूरा देश में जलजला हुआ है, उसका लीडर गांधी है, उस पर वाच है। फिर 22 में गांधी जी जेल चले जाते हैं, अगले 2 साल वो जेल में हैं, तो जेल से बाहर आके तो कर नहीं सकते हैं। आने के बाद वो फिर उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और वो ये सवाल कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा सवाल जिस पे जो लोग देश को प्यार करेंगे वो ये सवाल करेंगे कि मोपला आंदोलन दबाने में अंग्रेजों ने मोपलाओं को तो मारा, करीब 4,000 से ऊपर मोपला उसमें मारे गए, लेकिन उनने हिंदुओं को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। तो गांधी ये पूछते हैं कि अगर इंग्लैंड में अंग्रेजों का कोई तबका ऐसा आंदोलन करेगा तो उसमें आप अपने नागरिकों की हत्या पे और जो भीड़ के द्वारा मारे जा रहे हैं उन नागरिकों की हत्या पे उन्हें बचाने के बजाय आप हत्या में जुट जाएंगे, माने आप ये इंश्योर नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदू को ना मार सके, उन्हें मरने दे रहे हैं और आप इधर सेना के माध्यम से मुसलमान को मार रहे हैं, तो आपकी जो कोशिश है कि हिंदू मुसलमान का डिवाइड और बढ़े। तो गांधी यहाँ आते हैं कि जब ये तय हो चुका है कि हिंदू मुस्लिम एकता एक बुनियादी शर्त है भारत की आज़ादी की, और अंग्रेज़ ये कर रहे हैं और दोनों तबकों से गलतियाँ हो रही हैं, तो किसी भी बड़े आदमी की जिम्मेदारी है कि काम ऐसे करे कि दोनों में एकता कैसे बन सके, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और बड़े से बड़े जख्म दोनों कौमों को सहने पड़ेंगे। ये उनकी बातचीत का आता है। आखिरी में तो वो जो 25-25 के आसपास जो स्थिति बनती है कि जो 4-6 हज़ार मोपला मार दिए गए थे उनके बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, उनकी पत्नियों की स्थिति बहुत ख़राब है, भीख मांगने की स्थिति है, तो गांधी कह रहे हैं उनके लिए चंदा भी करो, क्योंकि जो पीड़ित है उसकी मदद करना है, जो गांधी का धर्म है वो उस पर कायम रहते हैं। ये सब बातें काट दी जाती हैं। और अब सावरकर के पे आइए, जो उनने मोपला वाली लिखी, वो उनने 34 उसके बाद में लिखा है आने के बाद, उसमें क्या वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में प्रेम हो? वो उसमें मैंने तो प्रसंग पूरा कोट किया है कि एक हसन आया, फिर एक हुसैन आया,
गर्भवती स्त्री के पेट में छुरा भोंका,
वर्दी वाला गुंडा, या इस तरह के जो उपन्यास होते हैं या और भी जिन्हें हमें बचपन में रोका जाता था कि आपको नहीं पढ़ना है, जिनमें इस तरह हिंसा सेक्स इस सब के बीभत्स दृश्य होते थे जो जुगुप्सा पैदा करते थे, उनका उनने पूरा उपयोग किया है। तो अब इसमें हम सावरकर सही हैं, गांधी सही हैं, इस पर छोड़ देते हैं। हिंदुस्तान के लिए क्या सही है? हिंदुस्तान में शांति ज़रूरी है, हिंदुस्तान में प्यार ज़रूरी है, हिंदुस्तान में सद्भाव ज़रूरी है। हो सकता है कि हमारे पुरखे बहुत से लोगों से बहुत लड़े होंगे, तो क्या हम आखिर तक लड़ते ही रहें या एकता करें? गांधी एकता के साथ हैं और सावरकर ये कहते हैं कि दोनों को अलग होना चाहिए, उस तरह से उन्होंने लिखा है।
पीयूष, इसमें छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री सवाल है। इतिहास लेखन की जो पूरी परंपरा रही है उसमें अक्सर ये बहुत बहस होती है और ये बहुत नैतिक तरह की बहस है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चाय चौबार तक लेकर जा रहा हूँ। क्या इतिहास को जैसा हुआ ठीक उसी तरह परोसा जाना, उसी तरह लिखा जाना चाहिए कि हाँ ये गलत हुआ, आपको आगे लेकर जाना है लेकिन ये हुआ था, इसको स्वीकार करिए? इसके बारे में
एंड रिकंसिलिएशन, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बहस है पीयूष भवेली जी, कि क्या इससे भला होगा इसलिए ना लिखा जाए?
नहीं,
मैं थोड़ा सा और विस्तार देना चाहूंगा। मोपला में जो हुआ, तो अगर इसी बात की चिंता हो कि भविष्य में इसका क्या असर होगा, इसका कैसा इस्तेमाल होगा, तब तो इतिहास में अब तक हुई हिंसा की सभी घटनाओं पर पर्दा डाला जा सकता है। मणिपुर में जो हो रहा है, 2002 में जो हुआ, 1984 में जो हुआ, मुरादाबाद में जो हुआ, मेरठ में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, मोपला में जो, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। तो आप कह रहे हैं कि इससे भविष्य को क्या लाभ होगा, लेकिन जैसा मेरे साथी दीपक ने कहा कि एक तरीका तो ये भी है कि जो कुछ हिंसा हुई उसको एज इट इज़ लिखा जाए, तथ्यपरक ढंग से, लुगदी साहित्य की तरह ना लिखा जाए, पर वो तो उपन्यास है, उसकी एक अलग टिप्पणी है, और उस अतीत को पढ़ के फिर आप अपना ये विवेक जागृत करें। तो अगर उस अतीत से आपके अंदर और हिंसा की आपको वजह मिल रही, तब तो जाहिर सी बात है कि देश का निर्माण नहीं हो रहा है। पर देश का निर्माण हो रहा है इसलिए साहब, उस अतीत को जो इनकन्वीनियंट ट्रुथ्स हैं अलग अलग पावर सेंटर्स के, साहब हमारे राज में आप इस पे बात मत करो, तुम्हारे राज में आप उस पे बात मत करो, उसका क्या किया जाए?
नहीं देखिए, जहाँ तक जो भी अच्छे इतिहासकार होंगे, मैं तो बहुत इतिहास उस तरह से नहीं कह सकता, हालांकि अब मैंने 2 किताबें लिख ली तो आप लोग कह देंगे कि आप तो जानते हैं, तो जितना आप तथ्यों के करीब जा सके जाना ही चाहिए और जो सत्य है वही लिखना चाहिए। तो दूसरी बात बर्नार्ड शॉ ने कही कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो इतिहास तो वही लिखा जाएगा कि इतिहास में जो हुआ, सबक हमें अपना लेना है,
कि इतिहास में इसने इसको मारा था, अब हम ये समझे कि मारना बुरी बात है या मारना अच्छी बात है, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन इतिहास को तोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जो हम कोई डिफेंड करने की बात नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ उस बात का कह रहे हैं कि गांधी ने उन सब चीज़ों का समर्थन किया था। मैंने सिर्फ ये लिखा है गांधी ने उन चीज़ों का समर्थन नहीं किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोपलाओं ने कोई विद्रोह नहीं किया था, कि हिंदुओं का कत्लेआम नहीं हुआ था, कि हिंदू को धर्मांतरण नहीं हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ गांधी ने इन बातों का समर्थन नहीं किया था। तो इतिहास को विकृत और क्यों करना, उससे आप क्या कर लोगे? और ये सभ्यता आगे आगे बढ़ती जाती है, दृष्टि का निर्माण करना पड़ता है। इतिहास अगर पढ़ना है या तो किससे कहानी के लिए पढ़ना है, हम भविष्य को देख सकें, हम भविष्य को समझ सकें, उसके लिए इतिहास देखने का मतलब है।
सवाल, और ये मेरा सवाल, मौजूदा वक्त में कांग्रेस के एक नेता के सलाहकार से कम और पूर्व पत्रकार से ज्यादा है, क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सत्ता के आने के बाद से दक्षिण पंथ महात्मा गांधी के साथ इस नए अनुराग के साथ क्यों पेश आ रहा है?
भाई मैं तो आजकल भोपाल में रह रहा हूँ और वहाँ की सांसद प्रज्ञा ठाकुर हैं, जिन्हें मोदी जी आज तक मन से माफ़ नहीं कर पाए हैं और ना मंत्री उससे सांसदी से हटा पाए हैं, ना उन्हें कोई दंडित कर पाए हैं। हिंदुत्व वाला दक्षिण पंथ में कहूँ, ये दोनों हर धर्म में दक्षिण पंथ होता है, ये हिंदू दक्षिण पंथ की हम बात कर रहे हैं, गांधी इसकी मजबूरी हैं, क्योंकि इसे पता है कि दुनिया में गांधी पूजे जाते हैं, बुद्ध पूजे जाते हैं, और अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हम सार्वजनिक मंच पर भी लज्जित हमें होना पड़ेगा। लेकिन मन नहीं है इनका, क्योंकि जो ट्विटर पर ट्रेंड चलते हैं, जो ये व्हाट्सअप जिनके हम आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके काउंटर के लिए एक किताब लिखी गई है, वही नेता मंच पे कुछ और कहते हैं और यहाँ बैठ के कुछ और कहते हैं। उन्हीं की तस्वीरें मिल जाएंगी जो गांधी के हत्या के डायरेक्टर्स थे उनके, या सीधे हत्यारों की स्तुति कर रहे हैं। अभी परसों ही नरसों ग्वालियर में कोई गोडसे की जयंती मना रहा था, भाजपा की सरकार है, सब क्या प्रतिबंध लगाया गया, क्या कोई सख्त कार्रवाइयाँ की गई? तो इनके दो मुंह हैं, एक मुंह है जो मंच पर है, जो दिखाया जाता है, जो राजघाट जाता है, जो गांधी को फूल चढ़ाता है।
तो आप कह रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि अपनाने भर के लिए ये किया गया,
स्वांग है, एक शब्द में यही कह सकता हूँ।
चलिए, किताब वाला में इस तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी, जिसमें सभी पक्षों के तर्कों को सुना जाए, उनके साथ संवाद किया जाए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय जरूर बताइए, और इस किताब के लिए भी मैं यही कहूंगा कि बहुत ही श्रम पूर्वक, अध्ययन पूर्वक इसको, गांधी वांग्मय को और तमाम उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों को पढ़ा गया, और फिर पीयूष बघेल ने उसकी अपनी।
सुरु भाई एक बात और जोड़ दूं इसमें बस।
जी बिल्कुल जोड़िए, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं।
दो किताबों पर एक साथ काम शुरू हुआ था गांधी जी पर,
जी
गांधी मिथक और सत्य और गांधी सियासत और सांप्रदायिकता।
हाँ।
ये आ गई है, वो तैयार है,
एक किताब और आनी है, नेहरू मिथक और सत्य के बाद गांधी मिथक और सत्य।
उसमें उन वो उसका फलक व्यापक है, ये सिर्फ सांप्रदायिकता पे हमने रखा, ये बात पे हुई, सांप्रदायिक प्रश्नों का जवाब इसमें है।
हाँ।
उसमें उन सारे सवालों का जवाब है जो रह रहे के अभी हमारी बातचीत में भी आना चाहते थे।
हाँ।
एक एक सवाल सुभाष का, सावरकर का, अम्बेडकर का, भगत सिंह का, पटेल का, सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है
बिल्कुल आने चाहिए। और ये चूंकि एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है जिसका कई दशकों तक भारतीय राजनीति पर प्रभाव रहा, और उन दशकों में जो फैसले लिए गए उन पर अब तक चर्चा होती है। अगर कोई आपसे ये कहे कि गांधी आलोचना से परे हैं, अगर कोई आपसे ये कहे कि गांधी ईश्वर या ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, तो आप गांधी वांग्मय को पढ़कर ही कह सकते हैं कि इस बात को सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। तो आप शास्त्रार्थ करें, आलोचना करें, पर ये याद रखें कि उससे आप हासिल क्या करना चाहते हैं, और जब ये सब करें तब सत्य को अपने अगल बगल मौजूद ज़रूर पाएं। पीयूष बघेल जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद आपको पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपनी अगली किताब को भी जल्द पूरा करेंगे।
बिल्कुल सौरभ भाई,
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। किताब वाला में आज के लिए इतना ही, बाकी हमारे साथी दीपक तेंदुलिया के नेतृत्व में, और बताएं कि आपकी किताबों को लेकर रुचि क्या है, आप इन दिनों कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
बाजा कुछ ललन टॉप सुनते हैं।